السلام عليكم ورحمة الله. أذان دي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سنت سے ثابت ہے
حضور says that it is proved from the practice of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم that during the Ramadan to important during the
خدا کی راہ میں خرچ کرنے اور ضرورت مندوں پر شفقت کرنے میں تمام دوسرے متقیوں سے آگے بڑھے ہوئے تھے और आपकी इन्फाक फी सबीलिल्लाह की मिसाल ऐसी ही थी जैसे तुनक रफ्तार से बाद सबा चलती हो, जो रहमतों का पैगाम लेकर आती हो और जहाँ से गुजरे वहाँ से फूल खिला दे। रमज़ान मुबारक में रावी बयान करते हैं इस हवा में मज़ीद तेज़ी पैदा हो जाती थी। जैसे हम जानते हैं कि बरसाती हवाएं ख़ास जोश और तुंदी के साथ चलती हैं, इसी तरह हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफ़क़त अलन्नास की हवाएं गैर मामूली तेज़ी इख्तियार कर लिया करती थी। वही सुन्नत आपके वक्त से आज तक मुसलमानों में जारी उसारी है और वो लोग जो बिलमूम गुरबा पर ख़र्च करने के आदि नहीं भी होते, रमज़ान मुबारक में कुछ फर्जी नेकियों की बिना पर कुछ रमज़ान के मुबारक माहौल से और सुन्नत की याद से मुतासर होकर वो भी अपने दिल और अपने हाथ अपने गरीब भाइयों के लिए खोल देते हैं। जमात अहमदिया खुदा के फजल से इस सुन्नत की बहुत ही इखलास के साथ पाबंद है और मैं समझता हूँ कि दुनिया में शाज ही कोई ऐसी जमात होगी जो मिन हैसुल जमात इस कदर एहतमाम के साथ इज्तमाई तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी इन्फाक फी सबीलिल्लाह के नमूने दिखाती हो और रमज़ान मुबारक में जिसमें एक गैर मामूली तेज़ी ना आ जाती हो। चुनाचे बोस्निया के लिए जो मैंने तहरीक की थी उसमें रमज़ान से ज़रा पहले की बात है, रमज़ान के महीने ने उसमें मेरी मदद की और अल्लाह के फजल से जमात ने जिस रंग में उस पर लब्बैक कहा है वो काबिल रश्क है और बाकी सब दुनिया की उन जमातों के लिए ख़ाब मुसलमान हो या गैर मुस्लिम जो इंसानी हमदर्दी में कुछ खर्च करना चाहती हैं एक नमूना है। उसके अलावा इस महीने में मैं जानता हूँ कि इनफरादी तौर पर भी और ख़ानदानी तौर पर भी और जमातों में इज्तमाही तौर पर भी अपने गरीब भाइयों की बहबूद पर बहुत कुछ खर्च किया जाता है। हमें दुआ करनी चाहिए कि यह सब खर्च महज लिल्लाह हो और अल्लाह की रज़ा के सौदे किए जाएँ, ना कि नफ्स की इना के, और जो कुछ भी हो खुदा की खातिर हो, बंदों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा जीतने की खातिर। मुख्तसरन मैं बोस्निया की तहरीक से मुतल्लिक चंद अदाद व शुमार रखता हूँ ताकि वो जमातें जो अभी तक इस क़ुरबानी में पूरी तरह शरीक नहीं हो सकी उनको भी एक तहरीक पैदा हो और बाकी अपने दूसरे भाइयों से आगे बढ़ने की रूह उनके अंदर भी जोलानी दिखाए। जब से मैंने ये ऐलान किया है
दिस अनाउंसमेंट दैट द वेल टू डू पीपल to give them impetus, I tell people about my own subscription. I will increase it by that I had increased it and people
Pakistani ki ek MD Mukhlis Khatoon ne juma sunte hi usi waqt 6000 pound ka vaada apni taraf se aur apne bachchon ki taraf se kiya aur ada kar diya aur phir मॉरिशस से एक मुखलिस अहमदी दोस्त की टैक्स फौरन मिली कि वो अपने और अपने बुजुर्ग वालिद की तरफ से 12,000 पाउंड का वादा पेश करते हैं। फिर पाकिस्तान से कराची से ख़ास खसूसन और लाहौर से भी मगर उससे पहले पिंडी से रावलपिंडी से मुझे याद है सबसे पहले रावलपिंडी से पाकिस्तान से बैक हुई और एक मुखलिस अहमदी डॉक्टर ने 6,000 पाउंड का वादा पेश भी किया और अदा भी कर दिया, वादा भी पेश किया और अदायगी भी कर दी। फिर एक और अहमदी डॉक्टर की तरफ से भी किसी का इरादा हुआ। फिर कराची की जमात से मुतद्दद अहबाब के वादे और वसूलियों की इत्तला मिली, बाज़ ने 6,000 के वादे करके अदायगी की, बाज़ ने 12,000 तक की भी की और एक ख़ानदान के 3 अफराद ने 6,000 यानी 18,000 के वादे किए, और जहाँ तक मुझे याद है अदायगी उस खानदान ने भी कर दी है। तो अब तक ये रकम बढ़कर 2,10,000 पाउंड तक पहुँच चुकी है, और ये वादे नहीं हैं बल्कि वसूलियाँ हैं खुदा की तरफ से, क्योंकि इस तहरीक में इल्ला माशाल्लाह जिसने वादा किया उसने फौरन अदायगी भी कर दी। तो ये जो फहरिस्त है इनफरादी जिन्होंने 6,000 या बाद ने 12,000 किसी ने 10,000 वादे किए हैं, ये इसकी तादाद 14 बन जाती है। और वो जमातें जिन्होंने 6,000 के मजमूई वादे या अदायगियाँ की हैं उनकी तादाद सरे दस्त 5 है। जैसा कि मैंने बयान किया है पाकिस्तान में तो इनफरादी तौर पर वादा करने वालों की भारी तादाद है, 4 बैरून पाकिस्तान से हैं और 10 पाकिस्तान से, लेकिन जमाती लिहाज से भी उदाफुल से पाकिस्तान का वादा बहुत आगे निकल चुका है। जिन जमातों ने 6,000 या इसके लगभग अदा करने की तौफीक पाई है उनमें कनाडा की तरफ से 10,000 मिल चुका है, ना 10,000 का वादा अच्छा 6,022 की अदायगी हो चुकी है, अमेरिका की तरफ से 6,737 की, बांग्लादेश की तरफ से 6,195, स्विट्जरलैंड की तरफ से 6,000 और जापान की तरफ से 6,000। दुनिया की जमातों में फहरिस्त अव्वलियत के अतबार से यानी आगे बढ़ने के अतबार से सारी तो मैं पेश नहीं कर सकता, लेकिन चंद एक नाम दुआ की तहरीक की खातिर पेश करता हूँ। पाकिस्तान की तरफ से अब तक 62,692 पाउंड की अदायगी हो चुकी है, और बरतानिया की तरफ से 45,297। इसमें से बहुत बड़ी रकम वो है जो अहबाब और ख़वातीन ने खुद मुझे दी और मेरी वसातत से आगे मरकज़ में पहुँची है, लेकिन इसमें वो जेवर शामिल नहीं हैं जो ख़वातीन पेश कर रही हैं। और मुझे याद है जिस तरह पहली तहरीक पे यहाँ ख़वातीन ने हैरत अंगेज़ नमूना दिखाया था जेवर पेश करने का, वही नज़ारे उससे मिलते जुलते अब फिर दिखाई देने लगे हैं। अमेरिका जर्मनी की बारी इसके बाद है, उनकी तरफ से 44,758 पाउंड की अदायगी हो चुकी है, और जैसा कि मैंने बयान किया है कनाडा, अमेरिका, स्विट्जरलैंड वगैरह इन सब की बारी बात में आती है। ताज्जुब की बात है कि बांग्लादेश जिस पर बहुत ज़्यादा माली बोझ है, और चूंकि वहाँ मस्जिदें जलाई गईं और बहुत भारी तादाद में भारी नुकसान जमात को पहुँचा, और बड़ी कुर्बानी की रूह दिखाते हुए बांग्लादेश ने खुदा के फ़ज़ल से अपने ज़ायशुदा नुकसान वाली जायदाद को बहाल किया, बहुत खर्च किया, बहुत मेहनत की, लेकिन इस तहरीक में फौरी तौर पर उनकी तरफ से भी 6,000 से ज़ायद की वसूली की इतला मिली है। अल्लाह ताला उन्हें बेहतरीन जजा दे और उनके अमाल में और भी बरकत दे। जेवरों का पेश करना खुदा के फल से एक अपना असर रखता है, और जब कोई खातून जिस उमूमन ख़वातीन को जेवरों से बहुत प्यार होता है, बड़ी मेहनत से बड़े शौक से बनाती हैं, जब कोई खातून अपना जेवर पेश करती हैं तो दिल पर जो उसका असर है वो एक ख़ास असर है, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा असर पेश करने वाले के दिल पर होता है। लन तनालु बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, कुरान करीम फरमाता है तुम नेकी को पा नहीं सकते जब तक वो चीज़ खर्च ना करो जिसे तुम्हें मोहब्बत हो, क्योंकि खुदा की मोहब्बत की खातिर खर्च करते हो, और अगर महबूब चीज़ पेश नहीं करोगे तो क्या पता कि तुम्हें खुदा से कैसी मोहब्बत है। तो नेकी की ऐसी प्यारी तारीफ फरमा दी जो मेरे इल्म के मुताबिक किसी और मज़हब में नहीं मिलती, कि नेकी है ही वही कि खुदा की राह में वो पेश करो जिससे तुम्हें मोहब्बत हो। तो औरतों के मुतालिक हम जानते हैं कि इंसानी ताल्लुकात के बाद जेवर से मोहब्बत रखती हैं, और इसका एक एक किसी कौम से ताल्लुक नहीं, दुनिया सब दुनिया में एक ही हाल है। उनका जेवर पेश करना लाजमन जेवर से बहुत बड़ी हुई मोहब्बत के नतीजे में हो सकता है। बस जब वो जेवर पेश करती हैं तो खा थोड़ा हो या जायद हो, खालसतन अल्लाह की मोहब्बत में ऐसा करती हैं और उसके नतीजे में उनके दिलों में जो पाक तब्दीली पैदा होती है उसकी कोई कीमत नहीं, कोई मोल नहीं डाला जा सकता। ऐसा जेवर पेश करने वालियाँ ऐसी लज्जत महसूस करती हैं कि फिर बाद में पछताती नहीं है कि हमने क्यों पेश कर दिया, बाद में ये तमन्ना रखती हैं कि काश दोबारा हो तो फिर पेश करें। चुनांचे इसकी एक मिसाल मैं एक इंग्लिश लंदन की एक खातून या के ख़त से पेश करता हूँ। वो लिखती हैं, 2 माह कबल मुझे तोहफा में जेवरात 10 चूड़ियाँ उसके अलावा एक सेट मिले थे जो भिजवा रही हूँ। इससे कबल भी आजजा अपना सारा जेवर किसी तहरीक में दे चुकी है, खुदा का एहसान है उसने फिर मुझे ये जेवर दिया और फिर मुझे इस कुर्बानी की तौफीक अता फरमाई। इस जेवर को ज़रूर कबूल फरमाएं, आजजा का शुक्रिया। तो इस जज्बे से जमात अहमदिया की ख्वातीन अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ पेश कर रही हैं और चूँकि रमज़ान के 2 महीने में खसूसियत से ये कुर्बानियाँ पेश की जा रही हैं, इससे मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह रमज़ान की बरकतों में से भी ये कुर्बानी के शिरकत करने वाले बहुत ज़्यादा हिस्सा पाएंगे। अब मैं रमज़ान मुबारक से मुतल्लिक बाज़ दूसरी नसाहे आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये सिलसिला चल रहा था कि रमज़ान की बरकात क्या हैं, रमज़ान से क्या फ़वाद वाबस्ता हैं, किस तरह इंसान को इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा करना चाहिए। इस ज़मन में चंद अहादीस नबविया आपके सामने तशरीहात के साथ रखता हूँ। हज़रत इमाम बुखारी किताबु सौम बाब हल युखाल रमज़ान और शहर रमज़ान इस बाब में बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख़ के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ तर्जमा करने वाले ने गालिबन गलत तर्जमा किया है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया जब रमज़ान का महीना आता है, यही तो बहस इमाम बुखारी ने उठाई थी कि रमज़ान को रमज़ान कहा जाए या रमज़ान का महीना कहा जाए। उस बहस के हल के तौर पर ये हदीस लेके आए हैं और जिसके अल्फाज ये हैं, इज़ा जाओ रमज़ान हो फुतिहत अबवाबुल जन्नत है, कि जब रमज़ान आ जाए तो फिर जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं। यानी हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इसे लाजमन रमज़ान का महीना नहीं कहा करते थे बल्कि रमज़ान नाम ही इस महीने का है। बहरहाल मुराद ये है कि मैं उनकी तो यह उनको तो इस बात से गरज थी इस वक्त इमाम बुखारी को कि ये साबित करें कि रमज़ान कहना, अकेला रमज़ान कहना दुरुस्त है या गलत, या रमज़ान का महीना कहना ज़रूरी है। लेकिन जो बात इस हदीस में है वो इससे बहुत ज़्यादा कीमती है कि हम रमज़ान को रमज़ान कहें या रमज़ान का महीना कहें। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ान में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख़ के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को जकड़ दिया जाता है। अब जहाँ तक बोस्निया पे जुल्म करने वाले शैतानों का ताल्लुक है वो तो जकड़े नहीं गए, जहाँ तक दुनिया के मशरक़ी और मग़रिबी ममालिक में खुदा ताला की से बगावत हो रही है, अल्लाह ताला के फरमूदात से और इंसानी ख़तरों से बगावत हो रही है और हर जगह इंसानियत के नाम पर बहीमियत के खेल खेल रही है, उसमें तो कोई कमी आती दिखाई नहीं दे रही। खुद मुसलमान ममालिक में भी हर शख्स ना रोज़े रखता है, ना रोज़े के दौरान रोज़े के हकूक़ अदा करता है, ना रोज़े के बाद रोज़े के हकूक़ अदा करता है। बाज़ ममालिक में रिवाज ये है कि सारी रात गाने की मजालिस रखती हैं, नाच गाना होता है और खूब ऐशोशरत के नज़ारे दिखाई देते हैं और फिर सुबह सहरी के वक्त कुछ खाकर तो रोजा शुरू कर दिया जाता है तो ये तो शैतान की कैद के कोई नमूने नहीं है फिर हजरत अब्दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या मुराद है कि शैतान कैद कर दिया जाता है और जहन्नम के दरवाजे बंद और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं मैं समझता हूँ और जाहिर बात है कि यही माना है कि मुराद ये है कि हर वो शख्स जो रमज़ान से फ़ायदा उठाए और उठाना चाहे उसके लिए खुदा ताला ये सामान फरमाता है उसकी गैर मामूली मदद फरमाता है आम हालात में नेकी बदी से बचने की इतनी तौफीक नहीं मिल सकती जितनी रमज़ान के महीने में मिल सकती है कम से कम 24 घंटे में से आधा दिन तो बांधा जाता है और जब वो बदियों से बांधा जाता है तो हकीकत में उसका शैतान बांधा जाता है हर इंसान के अंदर एक नफ्स अम्मारा और एक शैतान है जब उसके हाथ बन जाएं तो शैतान बांधा गया उसको जंजीरें पहना दी गई तो उन्हीं जंजीरों की याद उसको रोजे के बाद भी बदियों से बाज रखती है इन मानों में वो शख्स जो रमज़ान से फ़ायदा उठाना चाहे जो खुदा की खातिर बदियों से रुकना चाहे और नेकियों में आगे बढ़ना चाहे उसके लिए ये महीना ये पैगाम लाता है कि शैतान के हाथ बांध दिए गए और नेकियों में तरक्की के नतीजे में जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए बदियों से रुकने के नतीजे में जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए ये तो उस शख्स के लिए खुशखबरी है जो फ़ायदा उठाना चाहे और जो मुसलमान इस महीने में से गुजरता है और ना उसका शैतान बांधा जाता है ना उसके जहन्नम के दरवाजे बंद होते हैं ना जन्नत के दरवाजे उसके लिए खुलते हैं उसके लिए बहुत बड़ी तंबीह है कि खुदा की तरफ से बख्शिशों का मौसम भी आया इस्लाह नफ्स के हालात पैदा साजगार किए गए और इसके बावजूद कुछ बदनसीब ऐसे हैं जिनके जहन्नम के दरवाजे उसी तरह खुले रह जाते हैं और जिनके शैतान को हथकड़ियाँ नहीं पहनाई जाती बस इसमें मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है कि आम हालात में बदियाँ बुरी बात तो ज़रूर हैं लेकिन रमज़ान के महीने में बदी इख्तियार करना एक गैर मामूली बुराई इख्तियार बन जाती है और नेकियों से महरूमी इस महीने में आम महरूमियों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एक और जगह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी बुखारी किताबु सौम से हदीस ली गई है अन अबी हुरैरा था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कुल्लु अमल इब्न आदम लहू इल्ला सियाम फ़इन्नहु ली व अना अज़्ज़ी बिही बाद रवायतों में उज़्ज़ा बिही का ज़िक्र मिलता है वस्याम जुन्नत फैज़ा कान योम सोमिन सोम अहदकुम फला यरफुस वला यसखब फइन साअबहु अहदुन औ क़ातलहु फलयक़ुल इन्नी साइम वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लखुलूफु फमि सुआइम अथ्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क लिस्सायम फरहतान यफ़रहुहुमा इज़ा अफ्तरा फरेहा वैज़ा लख़िया रब्बहु फरेहा बिसौमिही इसका तर्जमा ये है कि हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है आपने अर्ज़ किया कि यार आपने कहा आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाता है कुल्लु अमल इब्न आदम लहू इंसान का हर अमल उसकी खातिर हुआ करता है इल्ला सियाम सवाए रोज़े के रोज़े उसके लिए नहीं होते फ़इन्नहु ली वो मेरी खातिर होते हैं वाना अज़्ज़ी बिही इसका तर्जमा एक ये बनता है मैं उसकी जज़ा देता हूँ और दूसरी रवायत के मुताबिक मैं ख़ुद उसकी जज़ा हूँ वस्यामु जुन्नतुन और रोज़े तो ढाल की तरह होते हैं फ़ैज़ा काना योमु सौम अहदकुम फला यरफुस वला यसखब जब भी इंसान को रोज़े का दिन नसीब हो उसमें वो बेहुदा गोई से काम न ले और शोर शर से परहेज़ करे अगर उसे कोई शख्स गाली दे या उससे लड़ाई करे तो उससे ये कहे कि मैं तो रोजेदार हूं वो जात जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है ये रसूल सल्लम फरमाते हैं उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है कि रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के हुजूर मिश्क मुश्क की खुशबू से बहुत बेहतर है लिस्वाय में फरहत आने रोजेदार के लिए दो खुशियां मुकद्दर हैं एक वो जब वो रोजा खोलता है तो उसका दिल फरहत से लबरेज हो जाता है और दूसरी वो खुशी जब वो अपने रब को पा लेता है इस सिलसिले में ये इस हदीस के ताल्लुक में बाज वजाहतें जरूरी हैं सबसे पहले तो ये है कि फरमाया गया कि हर नेकी हर इंसान अपने लिए करता है और ये नेकी जो है ये अल्लाह की खातिर है और अल्लाह इसकी जजा है या अल्लाह इसकी जजा देता है इसका क्या मतलब है क्या नमाजें अपने नफ्स के लिए पढ़ी जाती हैं क्या खुदा की राह में खर्च अपने नफ्स के लिए किया जाता है क्या बनी नौ इंसान की दूसरे किसी रंग में खिदमत करना इंसान अपने नफ्स की खातिर करता है और सिर्फ रोज़ा खुदा की खातिर रखता है ये तो काबिल फहम बात ही नहीं है इसलिए आमतौर पर जो लोग इस हदीस को पढ़ कर गुजर जाते हैं और गौर नहीं करते वो एक बहुत अहम बुनियादी नुक्ते से महरूम रह जाते हैं वो जो जिस हकीकत की तरफ इस रोज इसमें इशारा फरमाया गया है उस हकीकत को समझे बगैर आमतौर पर लोग इस हदीस से गुजर जाते हैं और ये एक मुश्किल मसला है जिसे ठहर कर गौर करके समझना चाहिए मैंने इस पर गौर किया और जब समझ ना आई तो फिर दुआ की कि अल्लाह तू ही समझा आखिर ये क्या फ़र्क है क्यों खुदा ताला ने ऐसी अजीब बात फरमाई क्योंकि यह हदीस कुदसी है रसूल सल्लम ने खुदा की तरफ मंसूब फरमाई है इसलिए अल्लाह ही ने फरमाया जो आपने आगे हम तक पहुँचाया तो मुझे इसका एक मज़मून समझ आया और मैं समझता हूँ कि जिस तरह मेरे दिल के लिए वो मुतमिन करने का मुझे बना आपके लिए भी मुतमिन करने का मुझे बनेगा नेकियाँ सबसे पहले ये समझना चाहिए कि लिखा इसकी जजा बताई गई है इस नेकी की खुदा से मुलाकात और दूसरी जगहों से ये पत साबित होता है वैसे भी इंसान अपनी अकल से सलीम से भी जानता है कि मरने के साथ लिखा का ताल्लुक है जो इंसान मर जाता है उसे लिखाए बारी ताला नसीब होती है और मरना दोनों तरह से होता है रूहानी लिहाज से भी और जिस्मानी लिहाज से भी और जब इंसान मरता है तो कुरान करीम से कतई तौर पर साबित है वो वहाँ से लिखा शुरू हो जाती है यानी रूहानी लिखा तो ज़िंदगी में ही शुरू हो जाती है लेकिन मरने के बाद तो हर शख्स खुदा के हजूर हाजिर होगा मैंने गौर किया कि जितनी दूसरी नेकियाँ हैं वो नेकियाँ अगर जारी रखी जाएँ या उनमें इंतहा कर दी जाए तो उसके नतीजे में आदमी मर नहीं सकता नमाजें पढ़ता रहे सारा दिन नमाजें पढ़े खाना अगर नहीं छोड़ता और पानी नहीं छोड़ता तो मरेगा नहीं अगर एक इंसान खिदमत खल करता है तो बेशक जितनी चाहे करे उसके नतीजे में मर नहीं सकता रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसके नतीजे में ज़िंदगी के वाजिबात इंसान अपने ऊपर हराम कर लेता है और अगर रोज़ा लंबा कर दिया जाए तो दो तीन चार पाँच दिन के अरसे के अंदर इंसान का अंजाम लाजिमन मौत है बस इसका मंतकी नतीजा ये निकलता है कि इंसान अगर रोज़े की नेकी को बढ़ाएगा लंबा करे तो मुलाकात अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए रवाना हो जाता है उससे कम दर्जे पर यह सफ़र फिर ख़त्म नहीं होता अल्लाह ताला की ये शान है कि हर नेकी को अपने मुंतहा तक पहुँचने से पहले अपने फजल से रोक देता है और फरमाता है कि बाकी जजा मैं अपने फजल से दूंगा नमाजें हम जितनी पढ़ते हैं अगर उतनी ही जजा हमें मिले तो एक इंसान की सारी उम्र की नमाजें अगर मिला ली जाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल की इबादत कह सकेंगे आप उसको जो बहुत ही इबादत करने वाले हैं उनकी 20 साल की बन जाएगी तो 20 साल की जन्नत के बाद उसकी नेकी ख़त्म उसकी जजा ख़त्म पर अल्लाह ताला उसी नेकी को इस तरह आगे बढ़ा देता है कि गोया वो हमेशा के लिए जारी हो गई और जो जजा उस हमेशगी के नतीजे में मिलनी चाहिए वो उसको अता होती है। बस नमाजों की जजा भी इस तरह मिलती है और दूसरी नेकियों की जजा भी इस तरह मिलती है, लेकिन किसी नेकी के नतीजे में चूंकि मौत मुकद्दर नहीं होती अगर उसे बढ़ा दिया जाए, इसलिए वो जजा नहीं मिलती। उसे ये नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह खुद उसकी जजा है, ये नेकी अगर तुम ज्यादा करोगे तो आगे मैं खड़ा होऊंगा। तो फरमाया तुमने अब मेरी खातिर गोया मौत कबूल कर ली है, अगर रोजा बढ़ जाए और लंबा हो जाए तो लाजिमन तुम मर जाओगे, एक मरण व्रत बन जाएगा और मुझसे मिलने की खातिर जान दे रहे होगे गोया के। मैं तुम्हारा कुर्बानी का वक्त छोटा कर देता हूं लेकिन तुम्हारी कुर्बानी की रूह कबूल कर लेता हूं, क्योंकि रोजे के फाकों के नतीजे में चूंकि तुमने लाजमन आखिर मुझ तक ही पहुंचना था, इसलिए मैं नेकी की मुशक्कत को काट देता हूं और जजा बनकर खुद आ जाता हूं कि अच्छा फिर मुलाकात करते हैं। और ये मुलाकात जो है ये आखिरत के लिए मुकद्दर नहीं है, इस दुनिया में मिलनी होनी चाहिए, ये मजमून है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्योंकि आखिरत की मुलाकात तो हर मरने वाले की होनी ही होनी है, रोजे की जजा खुदा खुद तब बनता है कि वो खुद आ खड़ा हो और खुद मुलाकात के लिए अपना जलवे इंसान पर जाहिर फरमाए। यही वो मजमून है जिसका उस आयत करीमा में जिक्र मिलता है जो मैंने आपके सामने पहले तलावत की थी, इजा सालका इबादी अन्नी फैनी करीब उजीब दावत दाए फल जस्तजी बुली, कि रमज़ान के रोज़े रखोगे तो मेरा वादा है कि मैं लिखा बनूँगा, लिखा के लिए आ जाऊँगा। तुम अपनी कोशिश से जो बात हासिल नहीं कर सकते मैं अपने फजल से तुम्हें अता कर दूँगा। और रमज़ान का आखिरी मकसद लिखाए बारी तआला है, यानी खुदा की राह में उसके मिलने की खातिर जान गवा बैठना। मैंने ही इसी आयत के मज़मून के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खबर देते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है इसकी जजा में खुद बनूंगा, क्योंकि अगर ये नेकी लंबी हो तो इंसान ने मरना ही मरना है, और जो मेरी खातिर जान देने पर तैयार हो जाए मैं क्यों उससे मुलाकात न करूँ। बस हमारे रोज़ों की कबूलियत का निशान ये है कि रमज़ान मुबारक के इख्तिताम से पहले पहले हम अल्लाह के जलवों के नज़ारे देखें, क़ुर्ब इलाही की लज़्ज़त महसूस करें और किसी न किसी रंग में लिखा से लज़्ज़त याब हों। ये ज़रूरी नहीं है कि खुदा एक ही तरह हर एक को दिखाई दे, नबियों से भी खुदा का मुख्तलिफ मामला है। जिस शान का जलवा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अर्श पर उतरा है वैसा जलवा तो किसी नबी ने नहीं देखा था, मगर हर नबी ने देखा था, कुछ ना कुछ तो देखा था, बगैर लिखा के नबूवत हो ही नहीं सकती। बस ये ज़रूरी नहीं कि लिखा एक ही तरह की हो, मगर कुछ ना कुछ लिखा ज़रूरी है, और ये निशान होगा इस बात का अमली सबूत होगा कि हमारा रमज़ान मकबूल हुआ। और अगर हमें लिखाए बारी नसीब ना हो तो फिर वही बात इतलाक़ पाएगी कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बस अपने रमज़ान को ज़ाया ना करें। दूसरी बात इस हदीस नबी में जो फरमाई गई है ख़ास तौर पर काबिल गौर, आप फरमाते हैं कि रोज़ेदार की मुंह की बू खुदा ताला के नज़दीक ऐसी है जैसे कस्तूरी की खुशबू हो। इस बात ने मेरी एक और ज़हनी उलझन का हल कर दिया। मैं ये सोचा करता था कि इंसान रोज़े के वक्त अपने हवास खमसा में से हर चीज़ की कुर्बानी पेश करता है सवाए नाक के, कुवत नाक से सांस लेता है, खुशबुएं सूंघता है, उससे कोई परहेज नहीं, और बाकी सब خواص خمسہ کی قربانیاں یہ کیا وجہ ہے؟ روزہ تو یہ مفہوم پیش کرتا ہے کہ سب کچھ جسم کا جو کچھ خدا نے عطا کیا سب خدا کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ ہو رہا ہو. اس حدیث نے یہ مسئلہ حل کر دیا. بدبو سونگتا ہے اپنی, ایک نفیس طبیعت کے لیے بہت بڑا عذاب ہے, اپنی بھی سونگتا ہے اور اپنے بھائیوں کی بھی سونگتا ہے. رمضان مبارک میں جو قریب سے بعض دفعہ بے احتیاط لوگ آ کے جب ایک دم بات کرتے ہیں تو منہ سے ایک دم بو کا بھباکا اٹھتا ہے جو روزے کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہے. ایک معدے کی کچھ خرابی ہوتی ہے, جن لوگوں کو فاقوں کی عادت نہ ہو ان کے معدے میں گیسیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ خون میں ملتی ہیں اور پھر خون کے ذریعے جب لنگز میں سے جس خون گزرتا ہے یعنی پھیپھڑوں میں سے تو سانسوں میں وہ بو آ جاتی ہے اور کچھ منہ کے اندر ویسے بند رہنے سے بو آ جاتی ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسئلہ حل فرما دیا کہ تمہاری قوت شامہ بھی اس قربانی میں شامل ہے اور جب تم روزے کے نتیجے میں اپنی بو کی تنگی محسوس کرتے ہو یا دوسروں کی بوئیں سونگتے ہو تو یاد رکھو چونکہ یہ خدا کی خاطر ہے اس لیے اللہ کے نزدیک یہ بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. تو رمضان میں نہ روزے میں یاد رکھیں انسان کو جتنی بھی خدا تعالیٰ نے طاقتیں ودیعت فرمائی ہیں صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان سب کی قربانی شامل ہوتی ہے قوت شامہ سمیت. پھر اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب روزہ رکھو تو بیہودہ گوئی سے پرہیز کیا کرو اور شور و شر سے پرہیز کرو. بعض لوگوں کو بیہودہ گوئی کی عادت ہوتی ہے, یاوا گوئی جس کو کہتے ہیں, اور عام بات کرتے وقت بھی کچھ نہ کچھ بیہودہ کلام کر دیتے ہیں. بعض لوگوں کو گالیاں دینے کی عادت ہے. ہمارے ملک میں تو اتنی عادت ہے کہ ذمہ دار ہر چلاتے وقت اپنے جانور کو بیچارے کو گالیاں دیتا رہتا ہے خام خائی. وہ بیل بیچارہ محنت کر رہا ہے, اس کی سوٹیاں کھاتا ہے ساتھ گندی گالیاں بھی. ایسا لغو طریقہ ہے, یہ شاید ہی دنیا کی کسی قوم میں رواج ہو مگر ہماری قوم میں تو خوب پایا جاتا ہے, یعنی پاکستان میں اور ہندوستان میں اور شاید بنگلہ دیش میں بھی پایا جاتا ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ روزے کے وقت خصوصیت سے توجہ کرو تمہاری زبان پاک اور صاف رہنی چاہیے, تو مراد یہ نہیں ہے کہ روزہ ختم ہو اور گالیاں شروع ہو جائیں. مراد یہ ہے کہ یہ بھی ایک ورزش کا دور زمانہ ہے, اس پہلو سے بھی ورزشیں کرو کہ خدا تمہیں پاک اور صاف زبان عطا کرے, اور روزے میں جب تم محنت کرو گے اور اپنے آپ کو روک کے رکھو گے تو انشاءاللہ بات کی زبان بھی پاک اور صاف ہی رہے گی. شور و شر نہ کیا کرو بے وجہ, اور اگر کوئی تمہیں گالی دے تو اس کے جواب میں کہا کرو میں روزے دار ہوں. یہ جو خصوصیت سے نصیحت ہے یہ اس لیے بھی ہے کہ بھوک کے نتیجے میں انسان کے لیے غصہ برداشت کرنا زیادہ مشکل ہو جایا کرتا ہے, اور عام لوگ جو بغیر بھوک کے زبان صحیح رکھتے ہیں وہ بھوک کے وقت بعض دفعہ جلدی وہ بے قابو ہو جاتے ہیں اور کسی ناپسندیدہ بات کو برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ میرا بھی تجربہ, ذاتی تجربہ ہے, روکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نصیحت گہری انسانی نفسیات کے مطالعہ پر مبنی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو الہام کا نور نازل ہوا اس نے آپ کی اس فطری روشنی کو اور بھی زیادہ روشن تر کر دیا. نور العلیٰ نور کا نظارہ ملتا ہے آپ کی نصیحتوں میں. بس انسانی فطرت کے گہرے راز آپ کو روشن تھے اور ان کو پیش نظر رکھ کے آپ نے نصیحتیں فرمائی ہیں. اس لیے صرف وہ شخص پیش نظر نہیں جو بد کلام ہو, عموماً پاک کلام کرنے والوں کے لیے بھی ایک امتحان کا وقت ہے, ایک خطرے کے مقامات ہیں. رمضان مبارک میں خصوصیت سے روزے کے دوران اپنی زبان کی نگرانی کیا کریں. صحیح بخاری کتاب صوم سے ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں. حضرت سہل سے روایت ہے, فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں, قیامت کے دن روزے دار اس سے داخل ہوں گے اور ان کے سوا کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا. پوچھا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں, تو وہ کھڑے ہو جائیں گے, ان کے سوا کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا, اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو بند کر دیا جائے گا اور پھر کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا. ریان لفظ جو ہے اس میں اس بات کی کنجی ہے کہ وہ کیا ثواب ان کو خصوصیت سے دیا جائے گا, کیوں ان کے لیے ایک علیحدہ دروازہ مقرر ہے. ریان ریا لفظ ریا سے صفت مشبہ ہے فعل سے, سیر ہونا, ضد العطشان یعنی پیاس کا الٹ, اور سیراب چہرے کو بھی پہ بھی لفظ یہی لفظ اطلاق پاتا ہے. چونکہ انسان خدا کی خاطر بھوک کے نتیجے میں کمزوری محسوس کرتا ہے, پانی نہ پینے کے نتیجے میں ایک اچھان کی کیفیت, پیاس کی ایک کیفیت بھڑک اٹھتی ہے بعض دفعہ, اور اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ انسان جس نے گرمیوں میں روزے رکھے اس کو بھی پتہ ہے کہ کس قدر وہ ایک کرب میں مبتلا ہوتا ہے. تو جنت میں دروازہ, ایسا دروازہ مقرر فرمانا جس کا عنوان ریان ہے, جس کے اوپر جلی حرفوں سے کوئی لکھا ہوگا کہ یہ سیرابی کا دروازہ ہے, اس میں سے لوگ داخل ہوں گے. جنت تو ایک ہی ہے, دروازے الگ ہوں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا صرف یہ اعزاز ہی ہے کہ ہم اس دروازے سے آئے تھے؟ اور پھر ایک وقت میں اور بھی تو دیکھیوں کے دروازے ہیں جن میں ایک روزہ دار آگے بڑھا ہوا ہوگا, کیا وہ ان سے محروم کر دیا جائے گا؟ یہ باتیں سمجھنے کے لائق ہیں. میں نے جہاں تک غور کیا ہے, حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف دروازوں کا ذکر کر کے یہ اطلاع دی ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی خاص نیکی میں امتیاز پائے گا اسی جنت میں اس پہلو سے اس کو زیادہ مزہ آئے گا, اس کا لذت اٹھانے کی صلاحیتیں اجاگر کی جائیں گی. اور جس کا مطلب یہ ہے کہ دودھ اور شہد جو بھی شکل ہے اس کی, یعنی ظاہری تو نہیں ہے لیکن جس طرح دودھ بس انسان کے لیے بعض غیر معمولی غذائی صلاحیتیں رکھتا ہے, یا شہد رکھتا ہے لذتیں بھی رکھتا ہے, اس طرح کی کوئی چیز ہے, ہر شخص ان سے ایک جیسا مزہ نہیں اٹھا سکے گا. اب ایک آدمی ٹھنڈا میٹھا دودھ پیئے, وہ اگر بھوکا ہے تو اس کو اور لطف آ رہا ہوگا, اور اگر وہ پیٹ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو بعض دفعہ اس کا دل ہی نہیں چاہے گا بلکہ دودھ پینے سے اس کو متلی پیدا ہوگی. تو بظاہر جنت کی نعمتیں ایک جیسی ہوں گی مگر جس دروازے سے انسان گزرے گا اس دروازے کی صلاحیتیں ساتھ لے کر اندر جائے گا, اور وہ شخص جس نے خدا کی خاطر بھوک اور پیاس کی تکلیفیں برداشت کی ہیں اس کو اسی جنت میں ان دو پہلوؤں سے باقی سب سے زیادہ مزہ آ رہا ہوگا. وہ زیادہ عمدگی کے ساتھ اور زیادہ لطافت کے ساتھ سیراب کیا جا رہا ہوگا. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ حدیث اس قسم کے مضامین بیان فرمائے ہیں, بعض ظاہر پرست ان کا مطلب سمجھ نہیں سکتے, وہ سمجھتے ہیں بڑا فلاں گیٹ سے نکل جائیں گے اندر داخل ہو جائیں گے, جس طرح دنیا میں گیٹوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں, وہ یہ بات نہیں ہے. وہ بعض تاثیریں ہیں, بعض غیر معمولی امتیازات ہیں جو ان کو بخشے جائیں گے جو ان کے ساتھ داخل ہوں گے, گیٹ کے ساتھ پیچھے نہیں رہ جائیں گے. بس وہ غیر معمولی لطف جو روزہ دار روزہ کھولتے وقت محسوس کرتا ہے غذا سے, اس سے بہت زیادہ غیر معمولی طور پر زیادہ جنت کی نعمات سے وہ محسوس کرے گا. پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز, یہ بھی یہ سنن ترمذی سے حدیث لی گئی ہے, آن حضور نے فرمایا کہ جو شخص ایک روزہ بھی بغیر شرعی اجازت کے اور بیماری کے چھوڑتا ہے پھر خواہ وہ زندگی بھر روزے رکھے اس روزے کی قضا نہیں ہے. قضا کا مضمون قرآن کریم میں کھول کر بیان فرما دیا گیا ہے. اور یہ اسی قدر اسی سے دراصل استنباط ہے. فرمایا کہ یہ شرطیں ہیں, یہ شرطیں اگر پوری ہوں تو تم روزہ نہ رکھو, اور اس روزے کے بدلے کچھ فدیہ دے دو, اور کچھ بعد میں روزے رکھ لو. بس جو روزے چھٹ گئے اس کے بدلے بعد میں روزہ رکھنے کی قضاء کی اجازت ہے. اگر وہ شرطیں پوری نہ ہوں تو خدا کی طرف سے قضاء کی اجازت ہی کوئی نہیں پھر. اس لیے جہاں اجازتیں مذکور ہو جائیں, ان اجازتوں سے باہر اگر کوئی انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے, کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے, اس کی قضاء ہے ہی کوئی نہیں. بس روزہ رکھ چھوٹنے کی کوئی قضاء نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. یعنی اگر عمدن بطور گناہ کے روزہ چھوڑا جاتا ہے, رکھنے کی طاقت کے باوجود چھوڑا جاتا ہے, تو پھر ساری عمر بھی روزے رکھیں تو وہ چھٹے ہوئے روزے بحال نہیں ہو سکتے. سنن ابن ماجہ سے یہ حدیث لی گئی ہے, اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. روزے تو آدھا صبر ہیں. اس حدیث کا جہاں تک پہلے نصف کا تعلق ہے, یہ بات تو ہر انسان عام طور پر سمجھ لیتا ہے, سمجھنا آسان ہے کہ جسم کی زکوٰۃ روزے میں نکلتی ہے. انسان جیسا کہ میں نے بیان کیا, انسانی جسم کو جتنی صلاحیتیں خدا نے عطا فرمائی ہیں ان سب میں سے وہ کچھ خدا کی خاطر مشقت برداشت کرتا ہے, اور ان سب پر اس مشقت کا اثر پڑتا ہے. کوئی بھی حواس خمسہ میں سے ایسے نہیں ہیں جن کو خدا کی راہ میں قربانی نہ کرنی بھی پیش کرنی ہو. بس یہ گویا جسم کی زکوٰۃ نکل رہی ہے, اور زکوٰۃ نکلنے کا جو مفہوم ہے اس کو سمجھنا چاہیے. زکوٰۃ کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ زکوٰۃ کم کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ بڑھانے کے لیے, اور ان لوگوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ سے مال کم ہوتے ہیں اور سود سے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سود سے کم ہوتے ہیں اور زکوٰۃ سے بڑھتے ہیں. یہ وہ مضمون ہے جس کی طرف اشارہ ہے. بس وہ انسان جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے جسم پہلے سے زیادہ صحت مند ہو جائے, جب وہ خدا کی خاطر اپنے جسم کی ہر طاقت کی قربانی پیش کرتا ہے, تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے کہ وہ زکوٰۃ شمار ہوگی, اور زکوٰۃ کے نتیجے میں اسی قسم کی چیزوں میں برکت پڑنے کا خدا کا وعدہ قرآن کریم میں موجود ہے. بس وہ جاہل جو یہ کہتے ہیں کہ روزے کے نتیجے میں مسلمانوں کی صحتیں کمزور ہو جاتی ہیں, یہ بیوقوفی ہے, ان کی لا علمی ہے. وہ سود خوری نظام سے کے عادی یہی سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے سے بھی کمزوری آتی ہے مال میں, اور زکوٰۃ کے جسمانی خرچ سے بھی جسم میں کمزوری آتی ہے. اور قرآن کریم فرماتا ہے اس کے برعکس صورت حال ہے. اور جہاں تک انسانی تجربہ ہے, میں اپنے تجربے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہر مہینے رمضان کے روزے فرض نہ ہوتے تو پتہ نہیں اب تک ہم زندہ بھی ہوتے کہ نہ, صحت کا کیا حال ہونا تھا, کن کن مصیبتوں میں مبتلا ہوتے. رمضان تو تمام کھوئی ہوئی طاقتوں کو بحال کر جاتا ہے, جسم کو ایک نئی جان بخش دیتا ہے. وہ کمزوریاں جو انسان نے اپنی غفلت سے خود اپنے اوپر عائد کر رکھی ہیں, وہ بیماریاں جو انسان جن میں اپنی غلطیوں سے ملوث ہو جاتا ہے اور ان کا شکار ہو جاتا ہے, رمضان سے آ کے دھلنی شروع ہو جاتی ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ. بس جو عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہمارے بچوں کی صحت کمزور ہو جائے گی روزے نہ رکھوائے جائیں, جو لوگ کہتے ہیں ان غیر ملکوں میں, غیر ممالک یعنی غیر اسلامی ملکوں میں, کہ نوجوانی کی عمر میں روزہ رکھنا مضر ہے, بالکل جھوٹ ہے. نوجوانی کی عمر میں فرض نہیں ہے, یہ درست ہے, لیکن جو رکھتے ہیں ان کو نقصان کوئی نہیں ہوتا. ہم نے قادیان میں اپنے گھروں کے ماحول میں یہی دیکھا کہ چھوٹے بچے بھی جو 8-9 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں, جو شوق سے روزہ رکھنا چاہتے ہیں, ان کو کبھی روکا نہیں گیا تھا. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری صحت کمزور ہو جائے گی, تم رک جاؤ. हाँ अगर कोई ज्यादा ही जोश दिखाए और कहे कि मेरे सारे महीने के रखने हैं तो उसे प्यार से समझाया जाता था कि ना करो. उसकी वजह बड़ी ये थी कि बाज़ दफ़ा कच्ची उम्र में ज़्यादा नेकी करने से नेकी से इंसान मुतनफ़र हो जाता है. वहाँ भी सेहत की खराबी का ख़तरा नहीं था, गालबन ये वजह होती थी कि बच्चा कहीं ज़्यादा जोश में नेकी करके आइंदा नेकियों से ना जाए कहीं और उसके दिल में एक नेकियों के ख़िलाफ़ एक किस्म की बेरगबती ना पैदा हो जाए. बहरहाल हमने बचपन में रखे हुए हैं, 7-8 साल की उम्र से, शुरू में 2-3, फिर 7-8, फिर बलूगत से पहले 15-20 तक पहुंच जाया करते थे और बलूगत के बाद खुदा के फजल से जहां तक मुझे याद है रोज़े रखने की तौफीक मिली, सख्तियों में भी, नरमियों में भी, छोटे दिनों में भी, ज़्यादा दिनों में भी, लेकिन कोई ऐसा नुकसान मुझे याद नहीं जिसने हमेशा के लिए सेहत पर बुरा असर छोड़ा हो. शायद रब्बा के इब्तदाई सालों में जब बना था, जो गर्मियां वहाँ पड़ी थी उनके नतीजे में हम कह सकते हैं कुछ नुकसान होता था, मगर वो इस तरह के शदीद गर्मी थी और 124 दर्जे तक टेम्परेचर सुबह शाम ठहर ही जाया करता था और बिजली नहीं थी, कोई पंखा नहीं था, तो नुकसान जो पहुंचता था वो इस तरह पहुंचता था कि बाल लोग चादरें भिगोकर उनमें लिपट के वक्त गुजारते थे और उससे आसाब पर बुरा असर पड़ता था. बस वो बराह रास्त गर्मी की सख्ती के नतीजे में नहीं बल्कि गर्मी के गलत इलाज के नतीजे में होता था. मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि बाल लोग जिन्होंने वो तजर्बे किए हैं वो शायद कह दें कि नहीं फलां वक्त तो हमें नुकसान पहुँचा था मगर अपनी गलती की वजह से. आम तरीक पर जो रोज़ा रखा जाए उसकी सख्ती बर्दाश्त की जाए उसका दायमी नुकसान नहीं हुआ करता सिवाय इसके कि बीमार रख ले. एक चीज़ और बड़ी दिलचस्प इस हदीस में बयान हुई है, वो है रोज़े तो आधा सब्र होते हैं. मैंने इस पर बड़ा गौर किया कि अल्लाह ने ये आधा सब्र क्या मतलब, पूरा सब्र क्यों नहीं. और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक बात बयान फरमाते हैं तो लाजमन गहरी हिकमत पर मबनी होती है, तो उस हिकमत से हमें भी कुछ नेमत, उस हिकमत की कुछ नेमत हमें भी अता फरमा दे, समझा दे कि क्या किस्सा है. तो दो बातें मेरी समझ में आई, एक ये कि रमज़ान खा गर्मियों के हों या सर्दियों के हों, कहीं रोज़े छोटे होते हैं कहीं बड़े होते हैं, लेकिन पूरा दौर जो गर्मियों सर्दियों का गुजरता है इसकी औसत निसफ दिन ही बनती है. बाज़ दफ़ा शमाली हिस्से कुतुब में की करीब जाएं बाज़ दफ़ा तो रोज़े छोटे होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर वहीं साल गुजारा जाए तो आगे बड़े रोज़े भी फिर वहीं आ जाएंगे. और दुनिया में कोई भी खिता ऐसा नहीं जहां के रोज़े रखने वालों की आखिरी औसत निसफ न बन जाए. बस रोज़े कभी छोटे कभी बड़े लेकिन औसतन निसफ रोज़ा ही बनता है, यानी 24 घंटे का निसफ रोज़े में कटता है. तो इस लिहाज से इसे निसफ सब्र कहना बहुत ही उम्दा मबनी बर हिकमत बात है. लेकिन एक और माने भी इसके मुझे ये समझ आए कि सब्र दो किस्म के होते हैं, एक उन बलाओं पर सब्र जिन पर इंसान का इख्तियार नहीं, जैसा कि आफात समावी हैं, जैसा कि किसी जालिम के जुल्म हैं, कोई माली नुकसान पहुंचा देता है, कोई लुटेरा लूट कर ले जाता है, कोई जिस्मानी अजियतें पहुंचाता है, जैसा कि आजकल बोस्निया में हो रहा है और बहुत से दीगर मुसलमान ममालिक में भी दिखाई देता है. कई किस्म के जुल्म हैं जो एक इंसान दूसरे पर तोड़ता है या जिन्हें आफात समावी कहते हैं, हवादिस ज़माना, उनके नतीजे में इंसान बर्दाश्त करता है. और उन पर अगर कोई सब्र करे तो वो बैरूनी मसाइब पर सब्र करना कहलाएगा, जिन पर इंसान का इख्तियार ही कोई नहीं. सब्र की एक किस्म है जो अंदरूनी मसाइब से ताल्लुक रखती है, जिसमें बंदे का इख्तियार है, मसलन पानी मिलता हो और ना पिए, भूख लगी हो और रोटी ना खाए जो मिल रही हो, दिल चाहता हो किसी से प्यार करने को और खुदा की का हुक्म बरसते में हायल हो, हरगिज नहीं। नजर आवारा होने की तमन्ना पैदा हो और खुदा का हुक्म रोक दे के खबरदार। जुबान चाहे कि बेलुगाम हो और अल्लाह का हुक्म कहे, हरगिज नहीं। तो हर जगह आप पहरे बिठा दिए जाएं, ये सब्र है। और ये सब्र तो ही सब्र है जो इंसान की अपनी जात से ताल्लुक रखता है। इस सब्र की जितनी तकलीफें इंसान खुद अपने ऊपर आयत करता है, अकल के साथ फैसला करते हुए या दिल के साथ फैसला करते हुए, जो भी ताल्लुक बात हो, तो ये निसफ सब्र है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान निसफ सब्र है। अब देखिए हमारे आका और मौला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कितनी गहरी होती थी। मैं तो जब हदीसें पढ़ता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ। अगर तो आप ऊपर से गुजर जाएं आराम से तो उन हदीसों का हुज़्न वैसे भी दिखाई देता है, हर बात प्यारी है। लेकिन वहाँ अगर ठहर जाएं और हदीसों की उनकी मजमून में उतरे नीचे, तो एक और मानी का जहान दिखाई देता है। जैसा कि अल्लाह की कायनात में बड़ी वसतें हैं, एक सतही नज़ारा है जिससे लुत्फ इंसान लुत्फानंदोज़ होता है, एक साइंटिफिक नज़ारा है जब एक साइंसदान एक जगह पहुंचकर उसकी कुनों तक पहुंचने की कोशिश करता है, अगर तेल के आसार आम अकल इंसान को दिखाई नहीं देते, एक साइंसदान को दिखाई देते हैं, वो खुदाई करता है, नीचे पहुँचता है और उसे तेल के चश्मे मिल जाते हैं। और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुदा की तख्लीक का एक शाहकार थे। और ऐसा अजीम शाहकार है कि जहाँ तफस्सुह कभी भी आपको मायूस नहीं करेगा। मैंने तो जब भी अहादीस नबवी पर गौर किया है, मुझे बहुत ही प्यारे हिकमत और अक़ल के मोती उसमें छुपे हुए दिखाई दिए हैं। और ये बात हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज के ऐन मुताबिक थी। आप अपनी नेकियों को खुद बाहर करके जाहिर करके दिखाते नहीं थे, और जो हिकमत आपको अल्लाह ताला ने अता फरमाई उसका जिक्र तो फरमाया है, लेकिन नुमाया करके उठाकर दिखाया नहीं कि देखो मैं कैसी अकल की बातें कर रहा हूँ, बल्कि वो मज़ामीन हैं जो अस खुद बहते चले जा रहे हैं और बनी नौ इंसान पर छोड़ दिया है, जो चाहे फ़ायदा उठाए, जो चाहे ना उठाए। इसमें एक इलाही इस्तिग़ना मिलता है, एक गिना की शान है। खुदा ताला ने भी तो कायनात में बेशुमार फवायद मख्फी रखे हुए हैं और बेशुमार हिकमतों के मोती हैं जो जगह जगह खुदाई कानून में छुपे पड़े हैं। लेकिन अगर एक सरसरी मुसाफिर सरसरी नज़र से उन पर से गुजर जाए, उसको पता ही नहीं कि मैं क्या देख रहा हूँ, उनकी कुनों क्या है। और अगर गौर करेंगे तो आपको हर मज़मून के पीछे एक और दिलकश मज़मून दिखाई देगा, उससे नीचे एक और दिलकश मज़मून दिखाई देगा। बस जैसा कि कुरान खुदा ताला की तख्लीक का एक अजीम शाहकार है, इसी तरह हमारे आका और मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला की तख्लीक का एक अजीम शाहकार है, एक पूरी कायनात है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि खुसूसियत से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से इस महीने में फैज़याब हों। वो हवा जो चला करती थी बनी नौ इंसान में खैरात की खातिर, वो चलना बंद नहीं हुई, वो आज भी जारी है। वो हवा रमज़ान में तेज़ तर आज भी होती है। वो ख़जाने जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के इरशादात में मदफून हैं, अब भी वो हासिल हो सकते हैं अगर कोई इंसान अपना हाथ फैलाए और उन तक पहुँचने की कोशिश करे। और इसका सबसे अहम तरीक़ ये है कि रमज़ान मुबारक में खुसूसियत से दुरूद और सलाम भेजें। और मुसलमानों के लिए दुआ का भी बेहतरीन तरीक़ा यही है कि आले मोहम्मद के हवाले से मुसलमानों के लिए दुआ किया करें। मैं तो जब भी खुसूसियत से कहीं आलम इस्लाम पर दुख पड़ता है तो दुरूद के हवाले से दुआ किया करता हूँ। अल्लाह जैसे भी हैं तेरे मोहम्मद के गुलाम हैं, तेरे आशिक मोहम्मद रसूलुल्लाह के से प्यार करने वाले हैं, जो कुछ और भी हों प्यार का दावा रखते हैं। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलातु वस्सलाम के अल्फाज में मैं अल्लाह के हुज़ूर अर्ज़ करता हूँ, काखर कुनन दावा हुबे पैगंबरम। उम्मत बिगड़ गई, बहुत सी बुराइयों में मुबतला हो गई, तेरे फजलों की मुस्ताक ना रही ना सही। लेकिन تیرے اور ہمارے محبوب آقا محمد تیرے محبوب بندے ہمارے محبوب آقا محمد رسول اللہ کے عشق کا دعویٰ تو رکھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس طرح درود پڑھیں تو آپ کی ساری دعائیں امت کے حق میں جامع بھی ہو جائیں گی اور زیادہ قبولیت کا درجہ پائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.